Hare Krishna, this class on Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 10, Shlok number 10, given in Faridabad Temple on 17 December 2015 by myself, Prashant Mukund Das.
तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक, लेकिन मेरे समझ से बाहर इसका वर्णन करना मुश्किल, क्योंकि इस श्लोक के अंदर वर्णन है नित्य काल का, वर्णन करें इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जो है किससे, मैत्रेय मुनि से। तो अभी तक चर्चा चल रही थी कि मैत्रेय मुनि कह रहे थे और अभी विदुर फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये नित्य काल कौन है, क्या है। आगे के श्लोकों में तो इसका सुंदर उत्तर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विदुर जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि नित्य काल का वर्णन करें जो संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्रकट है। तो इसमें जैसे महाभारत पहले सीरियल आता था, उसके पहले शुरुआत में आता था, हाँ मैं समय हूँ, सबको याद है, तो वो घूमता था उसमें एक साइकिल सर्कल। तो वर्णक काल जो है वो भगवान है। तो हमें समझना चाहिए कि भागवतम के अंदर इस प्रकार से वर्णन है, कहते हैं काल भगवान का स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। काल इज अनदर फॉर नेम फॉर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ऐसे करके मेंशन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक और नाम है काल। और काल के अंदर ही जैसे इसमें वर्णन है, परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए एक काल है। मतलब एक चींटी, पतंगा, जितने छोटे जीव हैं वो एक समय के लिए जीवित होते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। जैसे जो जब वो मोमबत्ती जलाते हैं तो बहुत सारे आग के कीड़े आते हैं, पतंगे आते हैं, उनके लिए काल होता है। मतलब 24 घंटे भी बहुत ज्यादा है, 6 घंटे 7 घंटे में वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उसी में वो उत्पत्ति भी कर लेते हैं, उसी के अंदर वो सृजन भी करते हैं, उसी के अंदर वो बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और मर भी जाते हैं। और उनको लगता होगा भाई लाइफ साइकिल कितनी लंबी है, लेकिन हमारे लिए वो छोटी है। ऐसे देवी देवताओं की लाइफ साइकिल हमारे से बहुत ही ज्यादा है, हजार वर्ष जीते हैं और कुछ 100 दिव्य वर्ष जीते हैं। जितना ऊपर प्लैनेट चलते जाएंगे उतना ऊपर ज्यादा आयु बढ़ती चली जा रही है। और विरजा नदी को क्रॉस करने के बाद भगवान के धाम में तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बहुत ही परमानेंट एटर्नल उम्र, शाश्वत जीवन मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो काल है वो कुछ समय का, किसी के लिए कुछ समय का है, लेकिन ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम हेतानुनेन कौन्तुवे जगत विप्रीवर्तते। ये सारा का सारा जगत मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करता है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचर अचरम, चलने वाली और ना चलने वाली वस्तु सब कुछ भगवान की इच्छा से ही चल रही है। तो हमें ये जानना चाहिए कि काल किस प्रकार से हर पल कटता चला जा रहा है, हर पल। तो हमें हर पल भगवान को स्मरण करने की कृपा भगवान ने दे रखी कि हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और जो भौतिकवादी भगवान का स्मरण नहीं करते, तो भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चामि अहम्, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। जैसे हरि भगवान का नाम इसीलिए क्योंकि भगवान हरण करने वाले हैं। जब व्यक्ति भक्त बनने की प्रक्रिया में होता है तब भगवान उसका अहंकार हरण कर लेते हैं, हाँ, और फिर वो धीरे धीरे विनम्र भक्त बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पीस, शांति नहीं आजकल जीवन में, लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, ओम शांति, और उसमें जाकर बोलते हैं और ओम शांति शांति शांति, या फिर मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं और फिर हमसे तर्क वितर्क भी करते हैं। भक्ति को तर्क से जाना नहीं जा सकता, लेकिन तर्क करते हैं क्या कि भगवान जो है वो ये है, इस प्रकार की रोशनी है, भगवान इस प्रकार का है, ये जो तर्क वितर्क करते हैं वो जानते नहीं है कि भगवान हाँ अहंकार को भक्षण कर लेते हैं। और जब अहंकार किसी व्यक्ति का जाता है तब असली शांति उसके जीवन में आती है। हाँ, कहते हैं एक भक्त को शांत बनने के लिए 5 प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली बताते हैं, निरंकार हितम निर्ममश्च निर्द्वंदो समदक स्वदक। एक व्यक्ति के अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली निरंकार हितम, उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भक्ति लता बीज जो है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, मंदिर में आते हैं वैष्णव कृपा करते हैं हरे कृष्णा बता देते हैं करिए, ये जो भक्ति का बीज हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, लेकिन ये उगेगा कौन सी मिट्टी में? अहंकार रहित मिट्टी में, विनम्रता की मिट्टी में, ह्यूमिलिटी, क्योंकि ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूमस, और वहां पर ह्यूमस मतलब होता है मिट्टी, सॉइल। तो मिट्टी होनी चाहिए विनम्रता की। निरंकार हितम निर्ममश्च, निर्ममश्च मतलब व्यक्ति को आसक्तियां नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी शेयर कर रहे थे कि हम सब कुछ त्याग कर मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद भी इतना सारा ये कलर के कपड़े, ये बुक्स, ये लैपटॉप, ये मशीन, ये मोबाइल, इतना सब कुछ हमने कर लिया, अब इससे छूटने के लिए समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो बोल रहे थे कि ध्यान पूर्वक जप करें, गुरु से पूछा, शास्त्र पढ़ें और धीरे धीरे देने की आदत डालें, है ना। तो भक्त ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं भक्त बन गया तो मुझे देना नहीं चाहिए, उसको भी देना चाहिए, ले लो ये, आप ये ले जाओ, आपके काम आएगा। निरंकार का निर्ममश्च और निर्द्वंदो, द्वंद नहीं होने चाहिए उसके जीवन में, बहुत द्वंद रहते हैं क्या करूं कि बस श्रेष्ठ भक्त कहलाऊं, नाम प्रतिष्ठा पूजा लाभ, इसी के कारण व्यक्ति जो है वो दिन पे दिन अपने जीवन का एक एक काल एक एक पल समाप्त किए चला जा रहा है। निर्द्वंदो और समदक, सबको बराबर समझना चाहिए, ये नहीं कोई नया भक्त है ये पुराना भक्त है, जो पुराना है उसको तो दंडवत करूंगा और जो नया है उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा, तो ये भी गलत है। समदक और स्वदक, स्वदक मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। हम मंदिर में आते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन कुछ समय बाद एक डेढ़ साल बाद ही सेल्फ रियलाइजेशन से हम बदल जाते हैं अदर्स रियलाइजेशन, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे कैसे भक्ति करते हैं, उनका जीवन कैसा है, मेरा कैसा है उससे मुझे मतलब नहीं है, दूसरे को कैसा है उसके लिए मुझे मतलब है, वो मेरी चर्चा का विषय है। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा स्वदक, अपने बारे में पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, अपना अपने बारे में सोचेगा और शास्त्र से अपने को आत्मा समझने का प्रयास करेगा, तब व्यक्ति कैसा हो जाएगा? पृथक प्रशांता धीधीरम प्रशांत उर्मी एव उदधी, इस प्रकार का शांत प्रशांत महासागर की तरह व्यक्ति हो जाएगा, जो समुद्र में इतनी लहरें उठती हैं, है ना, कितनी लहरें आती हैं समुद्र में, लेकिन अगर दूर से समुद्र को देखें तो पूरा शांत रहता है समुद्र। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आने के बाद भी व्यक्ति शांत रह पाएगा जब वो ये पांच प्रकार के गुण अपने अंदर अर्जित करता है। लेकिन भक्त समय काल में निकलते चले जा रहे हैं लेकिन इन गुणों को अर्जित करने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप देखिए रावण इतना अहंकारी व्यक्ति, सब कुछ था उसके पास, तीनों लोकों का स्वामी बोलता था अपने आप को और भगवान मानने का सोचता था, मैं भगवान हूं, वो लीला में वो कर रहे हैं उसका वर्णन, लेकिन जय विजय है बताया गया है, भक्त है, लेकिन वो लीला में दिखा रहे हैं कि अहंकार व्यक्ति का क्या क्या हश्र होता है अंत में। और जब उसे पता चला उसका पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ, जब वो वो लड़ने जा रहा है और वो समझ गया है कि इतना शक्तिशाली कोई युवा हो सकता है ब्रह्मचारी वेश में, ऋषि वेश में, मुनि वेश में, तो ये और कोई नहीं स्वयं नारायण है, भगवान है। और जाकर वो अपने पिता को कहता है, रावण को, कि पिताजी वो व्यक्ति जो हमसे लड़ने के लिए आया ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं श्री राम जो है स्वयं नारायण है, और आप उनके आगे क्या करिए, शरणागत हो जाइए। लेकिन किस कारण वो शरणागत नहीं हो पाया? अहंकार, भक्त की पहली गुण निरंकार हितम, वरना बहुत मुश्किल है। तो हम रावण जैसे हो जाएंगे अगर हमने अहंकार रहित हम अपना जीवन को नहीं करते हैं। तो वो भी काल के समय में, काफी लंबी उम्र है, इतना शक्तिशाली है, सारे गुण अर्जित कर लिए उसने, शक्तियां सिद्धियां सब प्राप्त है उसको, लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उसको एक पल में उसको नष्ट कर दिया। लेकिन जब वो मृत्यु के पल अंतिम समय में लड़ने जा रहा है तो अपने आराध्य देव शिव से वर्णन करता है, जिसे लोग रावण अष्टक या फिर पढ़ते हैं रावण ने जो अपनी प्रार्थनाएं करी है, तो उसमें भी काल का वर्णन करता है वो, कि बस काल दिन पे दिन निकलता चला गया और ये मुझे मालूम नहीं था अंतिम समय आ जाएगा, लेकिन मैंने अब तक अपना सर नहीं झुकाया ना, तो अब मरते समय क्यों सर झुकाऊं। वो जानता था रावण कि अब मेरे मरने के बाद मुझे कृपा मिलने वाली, क्योंकि मैं स्वयं भगवान राम भगवान नारायण के हाथ से मारा जाने वाला हूं, लेकिन फिर भी उसने कहा मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तो निरंकार होना चाहिए एक भक्त को, कुंभकर्ण का जीवन देखें तो उसने अपने जीवन को सोने में गुजार दिया, सोता ही रहा वो, उसने अपनी भक्ति में इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन को। तो काल कितना इंपॉर्टेंट है, कि पल इतना इंपॉर्टेंट है, वरना समय को भी काल कहते हैं जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और अंत समय को भी काल कहते हैं ना, कहते काल कभी भी हमारा भक्षण कर सकता है, तो वो काल भी है और ये भी काल है, और ये सब भगवान का ही प्राकृत स्वरूप है। जो कुंभकर्ण था उसने ब्रह्मा जी से बहुत प्रार्थनाएं करी कि ब्रह्मा जी मुझ पर कृपा करिए, और प्रार्थना तपस्या कर ब्रह्मा जी जब सामने आए तो वो चाहता क्या था, इंद्र का सिंहासन, कहता था मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए, स्वर्ग का राजा बना दो मुझे, और आदतें तो उसकी राक्षस प्रवृत्ति थी, अभी राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को डिपार्टमेंट जो है वो स्वर्ग का कैसे मिल जाए। तो जब प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी जो अपनी जो भार्या है, पत्नी है, सरस्वती को भेज दिया, कहा इसकी जिह्वा पे विराजमान हो जाओ। तो भक्त की जिह्वा पे भी कौन रहती है, सरस्वती विराजमान है, और उसकी जिह्वा पे भी सरस्वती विराजमान हो गई, और उसने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी बोले, बोलो क्या चाहते हो, तो बोला, बोलना चाहता था क्या, इंद्रासन, और उन्होंने सरस्वती ने उसका मुंह जिह्वा टेढ़ी कर दी, तो बोले क्या चाहते हो, कह रहा निद्रासन, तो निद्रा प्रदान कर दी है, और उन्होंने कहा अच्छा, ओहो, फिर उसे लगा मैंने क्या मांग लिया, तो बोले और कोई इच्छा, तो अब उसके मन में इच्छा आई कि कम से कम इंद्रासन नहीं मिला, कम से कम ये देवताओं का नाश तो कर दूं, तो उसने बोला इंद्रवतम, जितने भी इंद्र के जितने भी देवी देवता है ना, ये सारे क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। लेकिन उसमें भी फिर सरस्वती जी ने उसकी जिह्वा को ट्विस्ट कर दिया, टर्न कर दिया, और फिर क्या बोल रहा, निद्राव्रतम, मुझे ऐसा व्रत दे दो कि मैं नींद में रहूं। तो निद्रासन और निद्रव्रतम दो बार में उन्होंने कहा तथास्तु ब्रह्मा जी ने, और कहा सोता रहे। तो अपने काल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी क्या सही नहीं थी, इंटेंशन सही नहीं थी, तपस्वी भी था, हम सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, जप कर सकते हैं, और उसके बाद में हम जो है सेवा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंड रेजिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, सेवाओं में टॉप मोस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जो है क्या हमारी कॉन्शियसनेस चेतना अच्छी नहीं है तो बस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वो कैसे सही होगी, निरंकार एतम ईगोलेस, बहुत छोटा सा शब्द ईगो, बहुत बहुत मुश्किल है अपने जीवन से जाना। रूपा जी कहते हैं कि हम जो है इस संसार में बस ये दो ही काम करेंगे, लेमेंटिंग, रोते रहेंगे, और फिर दूसरी चीजों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ये मुझे अर्जित हो जाए, ये मुझे अर्जित हो जाए, और बहुत रोते बहुत हैं। छोटी सी कोई पोजीशन चले जाए ना, जैसे अभी हमारे मंदिर में किसी भक्त का व्यवहार अच्छा नहीं था, तो उससे सेवा बोला गया कि आप ये सेवा मत करो, अब आप जप किया करो ध्यान पूर्वक, जप करने से आपकी सेवाएं अच्छी होंगी, साधना पहले फिर सेवा। तो उसको प्रीचिंग करी गई, समझाया गया, लेकिन वो कैसे नहीं था, निरंकारितम नहीं था, तो उसने क्या कहा पता है, पूरे मंदिर में घूम घूम के बोलने लगा, ये मंदिर तो ऐसा है, पहले सेवा देते हैं फिर लात मार देते हैं, और क्या करते हैं, बोलते हैं अब मेरे जीवन में बचा ही क्या, सिर्फ जप ही तो बचा है। हमने कहा भाई वो तो कौन सा दिन है जब हमें कहे आप सेवा मत करो जप कर लो, यहाँ तो इतना टेंशन है, इतना सारा सेवा होता है करने के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमें जब करने के लिए बोल दिया, मेरी सेवा छीन ली, क्योंकि निरंकार है तो हम नहीं है व्यक्ति, अहंकार से सेवा करने के कारण, कॉन्शियसनेस अच्छी ना होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख उसे लगते आ रहे हैं, हर चीज से आसक्त हो जाता है। वह सेवा से आसक्त क्यों हो गए, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में वर्णन आता है कि वो इस प्रकार से प्रचार करते थे कि जो उस व्यक्ति से मिलते थे उसको ब्रह्मचारी लेवल तक लेके आ जाते, मतलब इस कॉन्शियसनेस में ले आते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस में चढ़ते थे, एक गेट से दूसरे गेट से उतरते थे तो आधे लोग ब्रह्मचारी बन जाते थे, इस तरह से वर्णन है। और उनको शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि कल सुबह आपको यहां से छोड़कर हांगकांग जाना है प्रीचिंग करने, तो वो चले गए सुबह अपना बैग उठा के, कोई अटैचमेंट नहीं है। निर्ममश्च, हमें इतना अटैचमेंट है हर चीज से, मेरी सेवा, मेरी पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, ये हटना नहीं चाहिए बस। तो ये जब तक रहेगा तो व्यक्ति शांत नहीं होगा, अनडिस्टर्ब्ड नहीं होगा, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड होगा, उद्विग्न रहेगा, हमेशा उसके जीवन में कुछ ना कुछ अतल पतल चलता रहेगा, भक्त होने के बाद भी परेशान रहेगा व्यक्ति। वो शांत तभी हो सकता है जब इन चीजों को अपने जीवन से वो निकाल दे, आसक्ति। जैसे एक बार एक स्टेशन पर एक व्यक्ति को 50,000 रुपए का एक बैग मिल गया, अब 50,000 का बैग लेके ट्रेन में चढ़ गया वो, अब ट्रेन में जा रहा है, सामने कोई बाबा जी बैठे थे, गौड़ीय वैष्णव नहीं थे लेकिन कोई बाबा जी थे, और वो हाथ में मजीरा लेते ना, छन 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 वो बजा रहे थे। वो बैठा और अपने बैग, बहुत नींद आ रही थी उसको, तो अपने बैग को सर के नीचे लगाकर सो गया और अपने घर पे फोन कर दिया कि है ना आज मुझे ना बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, कुछ धन प्राप्त हुआ है, तो घर में जिस भी चीज की आवश्यकता है, सोफा चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए, सब खरीद लो, बोलना कैश पेमेंट करेंगे, सीधा आकर कैश पेमेंट करेंगे। और सो गया अपना बैग लगा के, और थोड़ी देर बाद नींद खुली तो देखा कि बैग गया है उसका। अभी तो बाबा जी जो थे वो बोले छन 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 छन, बच्चा क्या हुआ, बहुत रोता है? तो बोला हाँ बाबा जी, रो तो इसलिए रहा हूँ। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। बोला रो तो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या चला गया, 50,000 रुपया चला गया। अभी बाबा जी जानते तो कुछ नहीं थे, वो तो बोल दिए ऐसे ही, जैसे हम जनरली जो गीता का सार पूरी दुनिया बोलती है, जो कि है नहीं लेकिन बोलती है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो उन्होंने भी वही तीर छोड़ दिया और बोले बच्चा क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। तो वो तो सोचने लगा कि बाबा जी बड़े त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं क्या लेके आए थे, इन्हें तो मालूम है मुझे स्टेशन से प्राप्त हुआ था। तो बोला बाबा जी आप तो सब जानते हैं, मैं तो फंस गया और वो रो रहा था। तो उन्होंने वही समझाया, तो हमें भी समझना चाहिए। वो कुछ समय के लिए उसे वो प्राप्त हुआ और वो अपना बोलने लगा, तो हम सोच सकते हैं कि अरे उसे तो कुछ समय के लिए मिला ना, लेकिन हमें कुछ समय के लिए थोड़ी, हमें तो ज्यादा समय के लिए मिला है, ज्यादा काल के लिए मिला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जन्म हुआ तब भी हम कुछ नहीं, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, और मृत्यु होती है तब भी सारे कपड़े चले जाते हैं, उसमें भी पॉकेट नहीं होती, उसमें भी पॉकेट नहीं होती है, ना लंगोटी में पॉकेट ना कफन में पॉकेट, पॉकेट तो बीच में आ रही है, और उसी में हम इतने आसक्त हो जाते हैं, मेरा धन मेरा सामान मेरी ये मेरा वो। तो निर्मोह जब तक नहीं होंगे, आसक्ति रहित नहीं होंगे, तो शांति हमारे जीवन में आना बहुत ही मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस गेन एंड लॉस, ये जो हमारे जीवन में जितना भी कैसा क्या कहते हैं गेन को हिंदी में, जैसे प्राप्ति और लॉस मतलब हानि, हमारे जीवन में जितने भी प्राप्ति हैं, धन अर्जित, मटेरियल लॉसेस एंड मटेरियल गेन, भौतिक प्राप्ति और भौतिक हानि, ये सारी तो भाग्य विदित है, भाग्य विदित है, डेस्टाइन, और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। रिक्शे वाला सारा दिन मेहनत करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, 100 रुपए, और एक व्यक्ति ऑफिस में बैठकर 2 फोन घुमाता है उसे क्या प्राप्त होता है, 5 करोड़ रुपए का एक डील कर लेता है सीधा, प्रॉपर्टी डीलिंग। तो इसका मतलब मेहनत से अगर धन आता तो फिर क्या बात थी, फिर तो एक जगह बता रहे थे कि कुत्ता लक्ष्मीपति कहलाता, क्योंकि वो सारा दिन इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक दौड़ता ही रहता है, मेहनत करने से नहीं होता। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपना कार्य छोड़कर बैठ जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे बस, इससे और क्या, बाकी समय का इस्तेमाल किसमें करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करने में। हाँ, वरना ये सोचें कि हमारी ज्यादा मेहनत करेंगे 12 घंटे 20 घंटे तो हम ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, तो प्राप्ति और हानि तो भाग्य विदित है, कितनी भी मेहनत कर लो नहीं आना तो नहीं आएगा, और कितनी भी मेहनत कर नहीं करो आना है तो वो आएगा। तो इसलिए बस फॉर एन एक्शन अपने कर्म को वहां तक जाकर करो और उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो जैसे भगवान कर्म नैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन भी कहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं संसार के काल चक्र के अंदर। बताते हैं, वर्णन करते हैं ना, जिस प्रकार से कि एक व्यक्ति था, वो जंगल में भागा जा रहा था और भागते 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 क्या हुआ, किसी शिकारी ने वहां पर रस्सियों का जाल बिछाया हुआ था, और रस्सी का जाल बिछाने से, और वो बिल्कुल पहाड़ी के कॉर्नर पे जाकर, किनारे पे जाकर बस गिरने ही वाला था कि उसका पांव जो था किसी के फंदे में फंस गया, और बिल्कुल ऊपर पेड़ पे वो लटक गया एक पांव से। अब एक पांव लटका हुआ है उसका हवा में, और जिस जगह वो लटका था वो पहाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर था, इसलिए नीचे खाई थी। अब वो जहां लटका है वहां उल्टा लटका है, नीचे खाई है ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, और नीचे खाई में शेर और सर्प वहां पर विराजमान है, और बार बार जंप कर रहे हैं, इधर से सांप और इधर से शेर, और वो उल्टा लटका है, और ऐसी स्थिति में दो चूहे हैं, बताते हैं, एक सफेद रंग का एक काले रंग का, और वो रस्सी को काट रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब किसी भी पल वो रस्सी जैसे ही टूटेगी वो खाई में जाकर मर जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मधुमक्खी का जो छत्ता है उसकी बूंद बूंद गिर रही है उसकी जीवा के अंदर, और वो क्या कर रहा है, शहद का टेस्ट ले रहा है, बहुत मीठा है। तो इसी तरह से सोचना चाहिए, ये जो है क्या है, हम भी उल्टे लटके हुए आते हैं ना, जब पैदा होते हैं तो उल्टे आते हैं, बोलते हैं उल्टा हुआ बच्चा, तो उल्टे लटके हुए हैं इस संसार में, और काम भी उल्टे ही करते हैं सारे, कोई शास्त्र अनुसार काम ही नहीं करते हैं। और उल्टे लटकने के बाद हम इस संसार के जो भौतिक मधुमक्खियों का छत्ता है उसमें से कोई बूंद गिर रही है जिह्वा पे, उसके आनंद में भूल जाते हैं कि नीचे मृत्यु काल रूप में हमारा इंतजार कर रही है। और वो जो चूहे हैं सफेद और काले, वो कौन है, एक दिन और एक रात, वो दोनों रस्सी को काट रहे हैं, किसी भी पल इस संसार की जीवन प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों से हम इग्नोरेंस भूल जाते हैं, इनको अज्ञानता में सिर्फ उस शहद के रस को चखने में अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्या क्या मिलने वाला है हमको, फिर भी उस भौतिक सुख के लिए हम इस आध्यात्मिक सुख को बलि चढ़ा देते हैं। अरे प्रभु जी माला का तो टाइम ही नहीं मिलता है, प्रभु जी शास्त्र पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि भौतिक हमें रस प्राप्त हो रहा है अभी। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहते हुए प्रभुपा जी बता रहे हैं अपने समय को दृढ़तापूर्वक भगवान के भजन में लगाना चाहिए, और बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम।
इसमें नारद मुनि व्यासदेव को भागवतम के पहले स्कंद में कहते हैं, इदं हि विश्वं भगवानेव एतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभावः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। तो भगवान एक ऐसे हैं जो कि ये स्वरूप संसार भी हैं और उससे निर्लिप्त भी हैं। जैसे एक वृक्ष, वो वृक्ष उसके अंदर पत्तियां भी हैं, टहनियां भी हैं, फल भी हैं, लेकिन जड़े भी हैं, लेकिन दूर से उसको व्यक्ति ये नहीं कहता हम जरा टहनियों के नीचे खड़े हैं, हम जरा फल के नीचे खड़े हैं, हम बोलते हैं हम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। तो इकाई के रूप में वो एक वृक्ष है, लेकिन अलग अलग रूप में वो बटा हुआ है। ऐसे ही अगर हम विराट स्वरूप भगवान का देखें तो ये पूरा विश्व जगत भगवान ही है, और उसके जितनी भी शक्तियां हैं उन्हीं को हम सोचने लग जाते हैं। ये मतलब मैं टहनी को तो पसंद करता हूं लेकिन वृक्ष को पसंद नहीं करता हूं, मैं फल के तो शरणागत हूं लेकिन मैं वृक्ष के शरणागत नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति समझ जाए कि पूर्ण रूप में ये इकाई भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, तो बस फिर व्यक्ति को कभी भी फंसने की जरूरत नहीं संसार में। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई भी चीज मटेरियल नहीं होती है, भौतिक नहीं होती है, भौतिक हमारी चेतना होती है। अब जैसे एरोप्लेन, देखने के लिए एरोप्लेन भौतिक है, भक्त सोचेगा मेरा एरोप्लेन में क्या काम, हवाई जहाज में क्यों बैठूं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा इस हवाई जहाज का इस्तेमाल हम करेंगे पाश्चात्य देश तारणे, पाश्चात्य देश तारणे, दूसरे देशों का तारण करने के लिए किया। प्रभुपाद जी रोज ट्रेवल करते थे, आज के वर्तमान आचार्यगण ट्रेवल करते हैं। मोबाइल फोन ये एक प्रकार की बेकार चीज हो सकती है, लेकिन इससे कितनी कांग्रीगेशन को फोन हो सकता है, मैसेज हो सकता है। तो देखने की बात यह है कि आपकी चेतना कैसी है, भौतिक या आध्यात्मिक। तो चीज भौतिक आध्यात्मिक नहीं होती है, आपकी चेतना भौतिक आध्यात्मिक होती है। अगर आप आध्यात्मिक चेतना सोचे, भगवान की इकाई सोचे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही नजर आएंगे आपको हर जगह हर चीज में। जैसे एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे और किसी भक्त ने बोल दिया गुड मॉर्निंग, एक व्यक्ति ने, तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा नहीं बोला, उसको क्या बोल दिया, गुड मॉर्निंग। तो पड़ोस में जो भक्त चल रहे थे वो सोचे प्रभुपाद जी विदेश में नए नए आए, इन्हें मालूम नहीं कल्चर के बारे में, और ये तो बोल रहे थे हर समय कृष्ण भावना भवित रहना चाहिए, हरे काल भगवान का है, तो ये कैसे काल से विपरीत होकर इन्होंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद जी आपने गुड मॉर्निंग बोला, हरे कृष्णा नहीं कहा। तो प्रभुपाद ने कहा गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा इज इक्वल, एक कैसा है, एक जैसा कैसे है, मतलब ये तो विदेशी शब्द है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय गुड मॉर्निंग, आपको क्या लगता है गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है। तो भक्त, चतुर भक्त हमारे जैसे गुरु से ज्यादा समझदार अपने को समझने वाले निर्बुद्धि दुर्बुद्धि बोलने लगे, कि प्रभुपाद जी गुड मॉर्निंग का मतलब होता है दिस इज लविंग एक्सचेंजेस, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होता है ना, तब एक दूसरे को जैसे मॉर्निंग में मिलते हैं हमारे यहाँ विदेशों में तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो प्रभुपाद जी बोले कि ना 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 आपको मालूम ही नहीं गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है, तो बोले मतलब बोले जब यूरोप में इतनी ठंड पड़ती है वहां घरों के बाहर बर्फ जम जाती है और कई कई दिन तक सूर्य नहीं निकलता, जब 15-20 दिन 25 दिन बाद कभी सूरज निकलता है तो एक दूसरे को भक्त बोलते हैं ओ टुडेज मॉर्निंग इज गुड, आज की सुबह अच्छी है सुहावनी है गुड मॉर्निंग सुप्रभात, तो इस तरह से बोला जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभुपाद हमने ये मान लिया लेकिन इसका कृष्ण से क्या रिलेशन है, तो प्रभुपाद जी ने कहा जिस प्रकार से धुंध और बर्फ यूरोप के देशों को पूरा जकड़े हुए है वैसे ही माया हम सबकी बुद्धि पे जकड़े हुए है, और कभी कभी जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, तब क्या होता है कभी कभी जाकर कोई रोशनी किरण इस माया को दूर भगा देती है, जब हम भागवतम क्लास में आते हैं दूर भगा देती है तब फिर वो क्या बन जाती है गुड मॉर्निंग बन जाती है। तब प्रभुपाद जी ने कहा तब भक्त जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण करने लगे। तो प्रभुपाद जी को देखिए हर एक चीज को कृष्ण भावना भवित रूप में समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी जानते थे कि इस संसार में कोई भी चीज अगर हमें सेपरेट करती है अलग करती है तो उसके पीछे कारण है सिर्फ काल, तो काल को भी हम दो रूप में देख सकते हैं एक भगवान और एक मृत्यु, ज्यादातर लोग मृत्यु के रूप में देखते हैं इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने पहले वर्णन कर दिया। तो अगर हम भगवान के रूप में देखें तो जब प्रभुपाद जी 1965 में विदेश में पहुंचे और कुछ 6 महीने बाद ही एक रिपोर्टर मिला उनको, एक व्यक्ति मिला और उसने पूछा कि स्वामी जी आप यहां क्या करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि विदेशी लोग हर चीज तो इंडिया से छीन के ले आए लेकिन एक चीज भूल गए थे वो मैं देने यहां आया हूं, क्या भूल गए थे कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का कल्चर देने आया हूं मैं। तो जब वो देने के लिए आए तो उन्होंने कहा अच्छा तो बहुत अच्छी बात है और मैं बताना चाहता हूं हु इज गॉड, भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा कौन है भगवान, तो फिर प्रभुपाद जी ने वहां पर भगवान का वर्णन किया कि भगवान कौन है और भगवान बताने आया हूं मैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अकेले हैं या आपके साथ कुछ लोग भी हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मेरे साथ तकरीबन 10,000 लोग हैं, हाँ और कितने आपके कोई सेंटर भी है या फिर आप अकेले ही हैं, कह रहे नहीं हमारे 108 सेंटर हैं, 108 सेंटर अभी 6 महीने हुए थे प्रभुपाद जी को आए हुए। तो उस रिपोर्टर ने कहा पर आपने तो अभी कहा कि मुझे सिर्फ 6 मास ही बीते हैं इस विदेश में आए हुए और आप कह रहे मेरे 10,000 शिष्य हैं 108 सेंटर हैं, प्रभुपाद जी ने कहा वो सब हैं और मैं भी हूं, डिफरेंस क्या है सिर्फ समय हम दोनों को अलग कर रहा है, सेपरेशन इज ऑफ अ टाइम, सिर्फ काल हमें अलग कर रहा है वो भी है और हम भी हैं। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कोई भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में भक्ति मय तो वो हमें और बस काल को हमें अलग कर रहा है, समय अलग कर रहा है, मृत्यु हर पल हमारा पीछा कर रही है बस क्या अलग कर रहा है हमें काल, सिर्फ समय हमें अलग कर रहा है। आप देखिए ब्रह्म विमोहन लीला इतना सुंदर वर्णन आता है भागवतम के 10वें स्कंद में कि ब्रह्मा जी जिसे स्वयं भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए बनाया वो ब्रह्मा जी जब आते हैं देखने के लिए कि भगवान कृष्ण ने बाल स्वरूप में क्या अपना लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में, तो देखने आते हैं तो देख करके सोचते हैं अरे ये ग्वाल वाल कैसे भगवान हो सकता है, ये तो एक छोटा सा कौन है ग्वाला है 6-7 साल का 5 साल का ये क्या कर सकता है, इस तरह से जब उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक थी तो उन्होंने जानने के बाद भी कि सृष्टि के रचयिता कौन है कृष्ण है, वो हमेशा प्रेयर करते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, लेकिन वो जिस गोविंद स्वरूप को देखते हैं राधा रानी के साथ वो गोपाल रूप में समझ नहीं पाए कि ये वही कृष्ण है, तो सोचे कि चलो इतने लोग कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ने अवतार लिया है जिस तरह से वेद व्यास जी भागवतम में कहते हैं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास जी ने वर्णन किया भागवतम के 1वें स्कंद में, तो सोचे चलो देख लेता हूं क्या यही वो कृष्ण है, तो आए तो उन्होंने कहा अगर ये सच में कृष्ण होंगे तो ये पहचान जाएंगे कि मैंने क्या चीजें चुराई हैं, तो उन्होंने ग्वाल बालों को चुरा लिया बछड़ों को चुरा लिया गायों को चुरा लिया और अपने साथ कहां ले गए ब्रह्म लोक में ले गए। भगवान तो समझ भगवान तो स्वयं भगवान थे, भगवान जानते थे, उनकी इस लीला को करने से पहले भी भगवान जानते थे कि ब्रह्मा ऐसी लीला करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने ग्वाल बाल और उनकी गाय बछड़े थे, जितनों को ब्रह्मा जी लेके गए थे, भगवान कृष्ण ने अपना ही स्वरूप, भगवान तो पूरा हमने बात की ना, पूरी एक इकाई भगवान है, तो भगवान ने अपनी शक्ति स्वरूप में सारे ग्वाल बाल दोबारा बना दिए, दोबारा गाय बछड़े बना दिए और सब विचरण करने लग गए वृंदावन के अंदर। और सब विचरण कर रहे हैं और इतने में वहां पर सब जब शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है और ब्रह्मा जी लौटा के नहीं जाते तो सब अपने अपने घर जाते हैं। और जब घर जाते हैं तो सारे माँ बाप हैरान हो जाते हैं, कहते आज हमें अपने पुत्र को गले लगाकर वैसा ही आनंद मिल रहा है जैसा कि स्वयं कृष्ण को कभी कभी देखने मात्र से हमें प्राप्त होता है। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बालक जो है वो क्या बन गया है, कृष्ण बन गया है। सबको ऐसा एहसास हो रहा है, गाय दूध दे रही है, कह रही है बछड़े को दूध पिलाने में आज जो आनंद आ रहा है वो वैसा ही है जैसे जब कृष्ण कभी कभी मेरे थन में अपना मुख लगाकर उसको पी जाता है, तो वैसा ही आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। और ये पता कितने वर्ष तक चलता रहा, पूरे एक वर्ष तक चलता रहा, क्योंकि ब्रह्म लोक में समय, जैसे बोला ना यहाँ काल परमाणु के लिए भी कुछ समय है और ऊपर कुछ समय है, तो यहाँ जो लगता है कुछ समय है वहां काफी समय बीत जाता है। तो ब्रह्मा जी तो कुछ क्षण के लिए लेके गए थे लेकिन नीचे पूरा का पूरा एक वर्ष बीत गया। और फिर जब वो लौट कर आए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे कृष्ण को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो ग्वाल वाले फिर से खेल रहे हैं, सब आनंद मग्न है। तो जब इस प्रकार से सोच ही रहे थे, ब्रह्मा जी वापस देने के लिए आते हैं उनके ग्वाल बाल और बछड़ों को, तो उससे पहले जब वो कृष्ण से कहते हैं कृष्ण ये क्या आपकी माया है, मैं तो फंस गया हूं इस माया में, ये सब कौन है, ग्वाल वाले तो मैंने चुरा लिए थे फिर ये कौन है, गाय और बछड़े मैंने चुरा लिए थे ये कौन है। तो कृष्ण कहते हैं ये सब मेरा ही स्वरूप है। तो कहते हैं अच्छा तो आपने ये मेरे को क्या विमोह कर दिया, क्या गुमराह कर दिया, क्या इल्यूजन में मुझे आप ले आए हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं वो देखो ऊपर, तो ऊपर दिखाते हैं तो चारों तरफ ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आते हैं। ये ब्रह्मा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा थे और अनेकों अनेकों मुख वाले ब्रह्मा ऊपर विचरण कर रहे थे और सब भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान ने दिखाया कि ये देखो मैंने ही अपना एक्सपेंशन, अपना ही विस्तार कर कर ग्वाल वाले और बछड़े बना लिए थे और वापस सारे के सारे भगवान में समा जाते हैं। तब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि मैं तो क्या हूं, मूर्ख हूं, मैं तो अपनी स्थिति को समझ नहीं पाया, मैंने तो इस काल कम के चक्र में भगवान कृष्ण को ही मैं भूल गया। और हम भी इसी तरह काल क्रम के चक्र में भगवान कृष्ण को ही भूल जाते हैं। तो हम ब्रह्मा जी की कथाओं को सुनकर तो बड़ा हंसते हैं, ओहो भगवान कृष्ण को नहीं समझा, लेकिन हम खुद अपने ऊपर नहीं हंसते कि हमारे सामने विग्रह रूप में भगवान है, भागवत रूप में भगवान है, नाम के रूप में भगवान है, लेकिन हम भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। काल क्रम में उस शहद के मधुमक्खी के छत्ते से शहद को चखने में अपना जीवन गुजारे चले जा रहे हैं। अब देखिए एक राजा थे जिनका नाम था रैवत, राजा रैवत। रैवत गांव पड़ता है वृंदावन के पास मथुरा व्रज मंडल में। रैवत जहाँ के बलराम जी जो थे उनकी पत्नी रैवती रहने वाली थी, उनके पिता का नाम था राधा रैवत। रैवत जिस जगह के रहने वाले थे उस जगह को रैवत देश बोलते थे। तो जो ये रैवत महाराज थे ये सतयुग में इनके घर भगवान की तपस्या और प्रार्थना करने पर एक पुत्री उत्पन्न होती है जिनका नाम वो रखते हैं रैवती। और जो ये रैवती थी इनके लिए इतनी इतनी सुंदर सुशील और हर एक चीज में जब कहते हैं ना सद्गुण संपन्न थी, तो उनके लिए कोई पुत्र चाहिए, जिसके वर चाहिए जिससे वो विवाह कर सके। तो उनके वर को ढूंढने के लिए वो अलग को जगह जाते थे लेकिन कोई भी उन्हें अपने पुत्री के लिए पसंद नहीं होता था। तो वो कहाँ चले गए, ऊपर के लोकों में पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए क्या करिए, एक वर प्रदान करिए। उन्होंने कहा अब वो नीचे से ऊपर गए सतयुग में, लेकिन ऊपर के लोकों में समय इतना फास्ट चलता है काल कि नीचे पता ही नहीं चलता कि कितना वर्ष बीत गए। तो उन्होंने कहा कि आप जब ऊपर आए थे तो सतयुग था लेकिन अभी सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया और अब द्वापर युग आया है और अभी वहां बहुत ही सुंदर बालक ने एक जन्म लिया जिसका नाम क्या है, बलराम। तो आप जाइए और बलराम आपकी पुत्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही वर है, जाइए आप उनसे क्या कर दीजिए, विवाह कर दीजिए। और वो नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद बलराम के साथ उनका विवाह करते हैं। लेकिन बलराम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी पत्नी बहुत ही लंबी है, इतनी हाइट है इनकी, क्यों, क्योंकि हर युग में काल बदल रहा है और उम्र बदल रही है और हाइट भी बदल रही है। कहते हैं जो सतयुग था वो 17,28,000 वर्षों का है, होता है, और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, 96,000 ईयर्स का होता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है और कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। और समय अगर देखें तो सतयुग में आयु होती है 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में आयु होती है 10,000 वर्ष, द्वापर युग में आयु होती है 1,000 वर्ष, और कलयुग में होती है सिर्फ 100 वर्ष, वो भी किसी किसी को मिलती है। और अगर हाइट देखें तो उसी तरह से हाइट भी, अभी अगर मान लीजिए 6 फुट हाइट है तो द्वापर युग में 10% बढ़ा दें तो फिर 60 फुट हाइट होती होगी, और अगर त्रेता युग में जाएं तो 600 फुट हाइट, और अगर ऊपर जाएं तो 6000 फीट। अभी ये 60 फुट के द्वापर युग के और वो 6000 फीट की, तो बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने सोचा कि भी क्या करूं, तो बलराम जो है वो कैसे हलधर रूपा, हल धरने वाले हैं, तो उन्होंने अपने हल को लेकर क्या किया, रेवती के कंधे पे लगाया और उसको पूरा नीचे घेर दिया और अपनी हाइट का सम हाइट है ना, सम कद का बना लिया उनको अपने, और फिर उनका विवाह हुआ। तो इस तरह से काल कम कितना नीचे कैसे चलता है और ऊपर किस तरह से बदल जाता है। जैसे एक राजा थे जिनका नाम था मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद बहुत ही क्षत्रियों में बहुत ही विशाल, एकदम प्रगाढ़ बेस्ट राजा थे, जो कि ताकतवर और हर सेना को हराने वाले। ऐसे राजा मुचुकुंद एक बार देवी देवताओं की हेल्प करने के लिए देवता लोक में, देवलोक में चले जाते हैं ऊपर, और जब नीचे आना चाहते हैं तो पता चलता है यहाँ तो युग ही बीत गए हैं। अब वो गए थे सतयुग में, नीचे आए तो हो गया द्वापर युग, 3 युग बीत चुके हैं, लड़ाई में पता ही नहीं चला टाइम का। तो जब वो नीचे आते हैं तो कहते हैं आपने हमारी इतनी हेल्प करी, मदद करी, देवता कहते हैं अगर आप कुछ हमसे चाहते हैं तो हम आपको प्रदान कर सकते हैं। कह रहे हाँ मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं नींद चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। जैसे हमारे भी भक्त सोचते हैं ना, क्या चाहते हैं? कह रहे हम सोना चाहते हैं, चाहे जब टाइम हो चाहे भागवतम टाइम हो, हम तो सिर्फ सोना ही चाहते हैं। हाँ तो उन्होंने भी कहा मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सो जाइए, और ऐसी जगह पर सुला दीजिए मेरे को जहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। उन्होंने कहा ठीक है, और अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो ऐसी शक्ति दे दीजिए कि बस वो मेरे नेत्र से जल जाए, कि मुझे उठा कैसे दिया सोते में से। हाँ तो इस प्रकार से राजा मुचुकुंद ने प्रार्थना करी और उनको सारी की सारी चीजें शक्तियां प्राप्त करके वो एक मुचुकुंद गुफा जो गुजरात में है, और वहां आकर वो विश्राम करते हैं। तो एक राक्षस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था जिसका नाम था काल यवन, उसका नाम ही था काल, हमारे आज के बिल्कुल शीर्षक टॉपिक से रिलेटेड काल यवन। और काल यवन भगवान कृष्ण को द्वेषी था, भगवान से द्वेष करता था, और बोल रहा है भगवान से कि आओ मुझसे लड़ो। कहते हैं राक्षसों को जब मरने की इच्छा होती है तो उनके शरीर में खुजली होने लगती है, आओ भगवान मुझसे लड़ो। तो भगवान लड़ने के लिए पुकारने लगा, आओ भगवान मुझसे लड़ो, भगवान को चैलेंज करने लगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है आओ आओ। भगवान उसको बिल्कुल इस प्रकार जैसे कुत्ते को आगे मालिक भगाता है, ऐसे ही बिल्कुल काल यवन को भगवान कृष्ण भगा रहे थे, और बार बार कहते थे मैं यहाँ हूँ, फिर उसके पीछे पीछे भागता था, फिर छुप जाते थे पहाड़ी के पीछे, फिर बोलता था कहाँ गया रणछोर, कहाँ गया छलिया, कहाँ छुप गया तू, मैं यहाँ हूँ, फिर उसके पीछे भगवान के भागता था। और भागते भागते भगवान ने दो कार्य करने थे, एक तो काल यवन का नाश और साथ में उनको उठाना था मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद को दर्शन देने थे, क्योंकि उन्होंने देवताओं की मदद करी थी। तो हम अगर जितने भी भक्त हैं ये भी देवता स्वरूप हैं, इनकी मदद करें तो स्वयं कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे आप कृष्ण को ढूंढने का प्रयास मत करिए, भौतिकवादी बोलते हैं कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं क्या आप हमको, वो बोलते थे भक्त वो होता है जो कार्य ऐसा करे कि स्वयं कृष्ण उसको देखने के लिए आए। ओ बड़े ध्यानपूर्वक जप करता है, बड़ा अच्छी सेवा करता है, देवताओं की हेल्प करता है, मदद करता है, भक्तों की मदद करता है। तो इस प्रकार से भगवान चाहते थे मुचुकुंद जी की कृपा करना उनके ऊपर और उनको दर्शन देना। तो वो काल यवन को मुचुकुंद की गुफा में ले गए, और वहां ले जाकर क्या किया, वो जो स्थिति में सो रहा था उसके ऊपर अपना पीला पीतांबर वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया। अभी पीतांबर वस्त्र डाल दिया तो वो जब अंदर आया ना काल यवन, कहता है बड़े मजे से सो रहा है यहाँ पे, मुझे भगा भगा के थका दिया, और यहाँ पर तू मजे से सो रहा है। और एक किक मारा उनको ना पैर से, लात मारा, चल उठ, लड़ाई कर मुझसे, अभी बताता हूं तुझे। और वहां तो कौन सो रहे थे? राजा मुचुकुंद सो रहे थे। और उनके पीताम्बर को हटाकर एक पल में वो जैसे ही अपना, अभी तो वो पूछ भी नहीं पाए थे, हुआ रही हूं आप कौन है, और उनकी आंखों से इतनी अग्नि निकली कि स्वयं काल यवन खड़ा खड़ा भस्म हो गया। अभी बोले कौन था, खत्म हो गया, पूछा भी नहीं तो पूछने तो टाइम तो देता है इतना पूछने का कि कौन हो, कहां से आए हो, अभी समाप्त हो गया। तो फिर भगवान कृष्ण पीछे से आए और उन्होंने कहा, चिंता मत करो राजा मुचुकुंद, ये कौन था, ये काल यवन था, और ये मेरी इच्छा से एक काल का भक्षण हुआ है, क्योंकि मैं काल स्वरूप में इसको समाप्त करना चाहता था, और तुमने कितने काल पर्यंत तक देवताओं की सेवा करी, उसके लिए मैं तुम्हें आज अपने दर्शन देना चाहता था। तो भगवान इस तरह से हम पर कृपा करते हैं अगर हम काल को सही रूप में समझे। वेद व्यास जी बहुत सुंदर भागवतम में वर्णन करते हैं, पद्म पुराण के अंदर भागवतम के गुणगान के लिए कई लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। तो उसके लिए पद्म पुराण में एक श्लोक से वर्णन, सुंदर वर्णन करते हैं, वो कहते हैं, सत चित आनंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो कहते हैं भगवान कैसे हैं, तो पहली लाइन में उन्होंने स्वरूप परिचय दिया, कैसे हैं भगवान, सत चित आनंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है, सत चित और आनंद। भगवान सत है, सत मतलब होता है जो चीज कभी भी काल क्रम में नाश नहीं होती है। हमारा शरीर नाश होता है लेकिन हमारी आत्मा सचित आनंद का अंश होने के कारण वो भी कभी नाश नहीं होती है। तो जो चीज कभी काल क्रम में नाश ना हो वो है सत, और चित का मतलब है वो चीज जिसमें सारा ज्ञान हो। जैसे हमारे पास हो सकता है इंजीनियरिंग का ज्ञान हो या मेडिकल का ज्ञान हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक लाइन का ज्ञान है, लेकिन भगवान के पास सभी की लाइन का ज्ञान है। इसीलिए सब किसी भी जाति किसी भी वर्ण किसी भी प्रोफेशन के हो, भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी आपकी कृपा की अभिलाषा करते हैं। और भगवान करते भी हैं कृपा, मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर की प्रार्थना पर उसे इंजीनियर बना देते हैं, लॉयर की प्रार्थना पर केस जिता देते हैं, और भक्त की प्रार्थना पर उसे धाम पहुंचा देते हैं। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान होने के कारण सब जानते हैं, इसीलिए वो चित हैं। और आनंद, हाँ, भगवान आनंद स्वरूप हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपावली में हम चीनी के खिलौने और चीनी के बताशे खाते हैं, उनके किसी भी कॉर्नर को तोड़ो तो मिठास ही मिलती है, ऐसे ही भगवान इस प्रकार के हैं कि उनके किसी भी अंग, उनके भगवान की किसी भी तदीय वस्तु के संपर्क में आने के कारण हम कैसे बन जाते हैं, हमें आनंद ही प्राप्त होता है। चाहे भगवान का नाम लें, चाहे भगवान का भागवतम सुने, चाहे भगवान के धाम में जाएं, या भगवान के भक्तों की सेवा करें, हमें सदा आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, आनंद स्वरूप आया, सच्चित आनंद स्वरूप आया। फिर भगवान का स्वरूप वर्णन तो कर दिया कि ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का लेकिन सामर्थ्य क्या है, तो सामर्थ्य परिचय देते हुए कहते हैं विष्णु विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, इस विश्व की उत्पत्ति करने का कारण भी भगवान है। लोग सोचते हैं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी, लेकिन वो गौण कारण है, मूल कारण स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो इस मूल कारण स्वयं कृष्ण हैं जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और अपने महाविष्णु स्वरूप से भगवान के शरीर से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो कुछ समय काल के अंदर ही बुलबुलों के समान समाप्त हो जाते हैं। कितने के समान? बुलबुले के समान। और हमें तो लग रहा है पता नहीं ये जीवन कब खत्म होगा, ये द्वेष ये लड़ाई वो झगड़ा, और भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और बुलबुले के समान समाप्त हो जाते हैं, और एक ब्रह्मांड में अनेकों प्लैनेट 14 भुवन हर ब्रह्मांड के अंदर, और 14 भुवन के अंदर ऊपर के लोगों में कितनी लंबी लंबी आयु के लोग, और वो भी सब समाप्त हो जाते हैं भगवान के कितने समय में, बुलबुले के समान, श्वास लेने और छोड़ने इतने समय में ही समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो भगवान मूल कारण है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। और फिर भगवान का स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव का वर्णन है तापत्रय विनाशाय। तो तीन प्रकार के जो तापों का वर्णन है, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक तो अभी चल रहा है चेन्नई में, ये आदि दैविक ताप है। जिन लोगों को कलेक्टिव कर्मास का कृपा मिलती है, कृपा क्या कहें या फिर पाप कहें, जब बहुत सारे सामूहिक कर्म इकट्ठे होकर जब उनको जीवन में पाप का फल मिलता है तो इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, आदि दैविक दुख, और आदि भौतिक दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले। और बाहर के लोग तो कम दुख देते हैं, स्वजन, घर के पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, ये सबसे ज्यादा दुख देते हैं व्यक्ति को, और वो इन्हीं से सबसे ज्यादा आसक्त होता है और इसी के कारण उसे दुख देते हैं। जब वो अपने अंत समय में होता है तब उसे समझ में आती है, या फिर वृद्ध अवस्था में होता है, मैंने इनके लिए अपना जीवन गुजारा लेकिन इन्होंने मुझे क्या कर दिया, एकदम साइडलाइन कर दिया, किनारे बिठा दिया है, अभी बात भी नहीं करते मेरे से, पूछते भी नहीं कैसे हैं, किसी भी निर्णय में मेरी हेल्प नहीं मांगते, मेरी मदद नहीं मांगते हैं। तो इस तरह से ये तीस जो है आदि भौतिक दुख और आदि आत्मिक हमारे खुद के शरीर के दुख, कभी बुखार आ जाना हमारे जीवन में, मेंटल टेंशन हो जाना, डिस्टर्ब रहना, उद्विग्न रहना, परेशान रहना, ये सारी आदि भौतिक में आदि आत्मिक दुख। तो ये तीन तापों को अगर समूल नष्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या है, तापत्रय विनाशाय। तो वेद व्यास जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं क्या करना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम ऐसे स्वरूप वाले भगवान, ऐसे सामर्थ्य वाले भगवान, और ऐसे स्वभाव वाले भगवान के क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण वयम नमः, ऐसे भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए और जोर जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्ण
की जय।